ओम शांति। बाबा की क्या क्या प्रेरणाएं रही याद करेंगे जरा एक बार। बाबा 6 मास में हम सबको कैसा देखना चाहते हैं, बोलो। माताएं बताएं, माताएं बहनें बताएंगी। बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं अगले 6 मास में, बोलो। नहीं बोलो, पीछे वाले बोले हैं। माताओं से पूछते हैं, पीछे वाली बहने याद रखना है सबको, व्यर्थ से मुक्त याद है ना सभी को। योग हमारा कैसा देखना चाहते हैं बाबा, ज्वालामुखी योग। और बताओ, स्वराज्य अधिकारी देखना चाहते हैं बाबा, का हर बच्चा राजा हो, विजयी रतन बनाना चाहते हैं, चाहे बाबा को कितनी भी लड़ियां घुमानी पड़े, सब बन जाएं तो सबको विजय माला में ले आए बाबा। और मनसा सेवा बहुत अच्छी, दुख हरता सुख करता बनकर सभी के दुख हरने हैं, रहम दिल बनना है, बहुत आत्माओं को हमारी सकास की जरूरत है। और बोलो, ठहरो आगे वाले तो एक्सपर्ट हैं, मैं पीछे वालों से चाहता हूँ। सीमा बहन आप भी तो एक्सपर्ट हैं। बाप समान, बाप समान, कम से कम बोल बाप समान हो जाएं, संस्कार बाप समान हो जाएं तो भी काफी हो जाए, संकल्प तो हो ही जाएंगे धीरे धीरे। तो बाप समान हमें बनना है, ये बाबा की कुछ प्रेरणाएं हमारे सामने हैं। हमने आपको कहा था कि 6 मास तक हम एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, पसंद है? नो इफेक्ट नो रिएक्शन। बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट होगा, विनाश को भी सामने रखते हुए ये चीज हमारे बहुत काम आएगी। और इसी के साथ साथ व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करते चलेंगे। एक काम और दिया मैंने शांतिवन वालों को, कईयों ने शुरू किया होगा, नहीं किया हो तो आज से शुरू कर देना है। नहीं, वो शांतिवन वालों का काम खास है। यज्ञ को हमें निर्विघ्न बनाना है तो रोज कम से कम 15 मिनट शाम को, 15 मिनट सवेरे सड़कों पर घूमकर श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने हैं। एक यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है, दूसरा बाबा ने क्या कहा था याद है आपको? कोई भी यहाँ आए, ध्यान सरोवर में ये अनुभव बहुत होते हैं लोगों को। आज भी कोई मुझे सुना रहा था, एक ग्रुप आया हुआ है अकोला से 50 लोगों का, कहने के थोड़ी देर बाद ही कहने लगे यहाँ तो हमारी टेंशन खत्म हो गई, अब एंजॉय कर रहे हैं। आज पहला दिन है, कल दूसरा होगा उनका, कल आए शाम को, तो थोड़ी देर के बाद ही वो कहने लगे जो उनको जानते हैं वहाँ, तो मुझे भी क्लास लेना है, तो बता रहे थे कि देखो उनका इतना अच्छा अनुभव हो गया है। तो शांति वन के वाइब्रेशंस को हम ऐसा बनाएंगे कि यहाँ आते ही लोगों की थकान दूर हो जाए, मानसिक थकान, उनको उनकी समस्याओं का हल मिल जाए, उनके अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होने लगे, और यहाँ वो प्रभु मिलन के लिए आते हैं, सभी को बाबा के मिलन का बहुत सुंदर अनुभव हो। ये काम हम सब शांतिवन निवासियों को करना है। शुरू किया किसी ने? हाँ बहुत अच्छा, 10 ने तो शुरू कर दिया, और कर दें शुरू 15 लोग, हरगोविंद शुरू कर देना है, बहुत आनंद आएगा। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, कुछ ना हो तो इस स्मृति को बार बार अपने अंदर लाते हुए सड़कों पर घूमेंगे तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होंगे। ज्ञान सरोवर जब बन रहा था तो हमने वहाँ नए नए भाई रहते थे, उनसे ये अभ्यास बहुत कराए थे सब, तो उसका इफेक्ट प्रैक्टिकल में पहले दिन से दिखाई देने लगा था। व्यर्थ से जितना जितना हम मुक्त होंगे और ऐसी अच्छी स्थिति में रहेंगे तो ये बहुत बड़ी सेवा जो भविष्य में आने वालों पर बहुत सुंदर इफेक्ट डालेगी वो होती रहेगी। आप सबने देखा शंकराचार्य अभी आए, हमने तो दो बार देखा, मीटिंग में भी उन्होंने बोला और कल क्लास में बोला। ये अपने में एक बहुत सुंदर चीज है क्योंकि अब ये टीवी पे आ जाएगा, रेडियो मधुबन में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत ही ओपन माइंडेड ये व्यक्ति है और मैं सोच रहा था ये तो बाबा के काम आएगी आत्मा जरूर। बिल्कुल बीके न बने तो माइक तो बन ही जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य का बीके बनना जरा कठिन काम है पर माइक तो बन ही जाएगा। उसने वो बातें अपने भाषण में बोली, देखो 5-7 मिनट बोला, आप में से बहुत शायद कोई कोई जानता हो शंकराचार्य की फिलोसफी है अद्वैत फिलोसफी, आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं, सब एक ही एक, एक ही ब्रह्म, नथिंग एल्स, जगत मिथ्या कुछ है ही नहीं। और उसने बोला आत्मा और परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आप लोग ये योग कर रहे हैं, इसको उसने मान्यता दी कि संपूर्ण योग है, ये संपूर्ण सत्य चीज है। बहुत सुंदर सुंदर बातें उसने मीटिंग में बोल दी थी। तो ये बाबा के कार्य की सफलता का एक बहुत सुंदर स्वरूप हमने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि कई लोग बोल रहे थे जो मुझे भी आभास हुआ कि ये आदि शंकराचार्य की आत्मा है जो अपना अधिकार लेने के लिए बाबा के पास आ गई है। क्योंकि आज तक ये देखा गया था कि शंकराचार्य जो हमारे पास आए ना वो बड़े ऑफिशियल रहते थे, उनको ज्ञान सुनाना इम्पॉसिबल, लेकिन इसने तो ज्ञान की बातें देख ली बहुत सारी, मुरली सुनने आ गया, माइक पे भी सुन ली, अट्रैक्शन हो गया उसको मुरली का, तो ये वाइब्रेशंस का भी इफेक्ट है। इसलिए हम हर बार याद करेंगे इस बात को, आपको याद दिलाएंगे, यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए भी, और यज्ञ के वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हो जाएं कि जो भी यहाँ आ जाए बस वो वैसा ही वापस न जाए जैसा आया था, बदल के जाए, तो हम व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करेंगे। और अब हम इस बात को प्रारंभ कर लेते हैं, नो इफेक्ट नो रिएक्शन, समझते हैं ना इंग्लिश के शब्द सभी, नो रिएक्शन। देखिए क्या होता है, किसी ने हमें दो गलत शब्द बोले, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, उसने दो बोले हम चार बोलेंगे। नो रिएक्शन का अर्थ है कोई हमें कुछ भी बोले तो हम रिएक्ट न करें, हम कुछ समय के लिए शांत चित्त हो जाएं, धैर्य चित्त हो जाएं, हम ऐसा एक अपना नियम बनाएंगे, सभी प्रैक्टिकल नियम बनाए अब से ही, हमें 5 सेकंड के बाद ही उत्तर देना है, 5 सेकंड केवल, 5 सेकंड तो ज्यादा नहीं होते ना, तुरंत नहीं, उसने कहना बंद ही नहीं किया और हमने शुरू कर दिया, ये नहीं, 5 सेकंड के बाद बोलो पसंद है, होगा ना। इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, इससे नो रिएक्शन की हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी, और जो थोड़ा भी मन मुटाव हो जाता है, जो संगठन में थोड़ा भी डिस्टरबेंस होता है वो समाप्त हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हमें लंबा समय करनी है, 6 मास हम इस पे ध्यान देंगे, हम इसको रिपीट करते रहेंगे। नो इफेक्ट, बहुत सुंदर स्थिति है, बाबा के महावाक्य हैं, परफेक्ट माना नो इफेक्ट। बाबा उदाहरण दिया करते हैं, ये मुरलियां शुरू में बहुत चली अव्यक्त मुरलियां, कि जो चीज फुल होती है वो छलकती नहीं है। पानी हम फुल भर दें घड़े में तो वो छलकेगा नहीं, उसको हम कहीं ले जाएं बाहर नहीं गिरेगा, और आधा भरा हुआ हो तो छलकता रहेगा। हम भी जैसे जैसे फुल होते जाएंगे तो इफेक्ट से मुक्त होते जाएंगे। ध्यान देंगे आप सब, किस चीज में फुल? पहला बोलो, ज्ञान में फुल। ज्ञान हमें बहुत सुख दे रहा है ना, ज्ञान की बहुत सुंदर सुंदर बातें रोज मुरलियों से हमें मिल रही हैं, जो हमें भरपूर कर रही हैं। अव्यक्त मुरली भी याद होगी, संडे वाली, भरपूर करती हैं ये चीजें हमें। दूसरा फुल किस में होना है हमें? आंतरिक सुंदर अनुभूतियों में। बहुत सुंदर संगम युग की अनुभूति है ईश्वरीय सुख, इस पे सभी ध्यान दें। हमें बाबा का बनने से, बाबा की मुरली से, बाबा से योग लगाने से सुख प्राप्त हो रहा हो, ये सुख हमारा बढ़ता जा रहा हो दिनों दिन। ये मुरली पढ़ लेने से नहीं मिलता कि भाई हम तो उठे 7 बजे और उठ के नहा धो के मुरली पढ़ ली और हम खुश हो गए कि हमने तो मुरली पढ़ ली, अटेंडेंस लग गई। ये नहीं, मुरली के पीरियड को हम सुखों का पीरियड बनाएं। बहुत सुख आत्मा भर कर लौटे मुरली के बाद, शांतिवन वालों को महसूस होगा जब दादी जान की मुरली पड़ती है, जो क्लास में होते हैं तो वाइब्रेशन से अलग हो जाते हैं। दादी थी बड़ी दादी, हमने तो 28 साल उनकी मुरली सुनी मधुबन में, रस था मुरली में। मुरली सुनकर ऐसा लगता था सुखी होकर वापिस आ रहे हैं। इस सुख से भरपूर जब हम होते हैं, ज्ञान से भरपूर होते हैं, योग की शक्ति में हम भरपूर होते हैं, तो किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं होता। सभी को बिल्कुल ध्यान देना, अच्छी तरह ध्यान देना है, हमें नो इफेक्ट की स्थिति बनानी है। सबसे पहले क्या लेंगे हम, किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है? दूसरों के शब्दों का, बोल का। संसार में बहुत लोग दूसरों के बोल से दुखी हैं, और कई लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि किसी ने कुछ कहा सब ब्रेन में आ गया, सबका इफेक्ट हो गया। हमें इस पे अटेंशन देना है। दूसरों के शब्दों का इफेक्ट किन पर नहीं होगा? जो बाबा के शब्दों के इफेक्ट में रहते हैं। बाबा के बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य होते हैं, बाबा के शब्द ही बहुत अच्छे होते हैं, जो हम पर संपूर्ण रूप से प्रभाव डाल देते हैं, उस प्रभाव में हमें रहना है। इसलिए बाबा के महावाक्यों का सुख लेना, उन्हें स्वीकार करते चलना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज हम याद रखेंगे, हमें बहुत हल्का रहना है। इस बात पर हम हर बार अटेंशन दिलाएंगे, हमें बहुत हल्का रहना है। हम दूसरे के हर शब्द को सीरियसली न लेते रहें, हल्के रूप से रहें। संगठन को हम जान लें, संगठन में कोई न कोई ऐसी आत्मा होती है जो कुछ न कुछ बोलती है। हम अच्छा काम करेंगे तो भी लोग बोलने वाले मिलेंगे या नहीं? दो चार। अगर 10 लोग अप्रिशिएट करेंगे तो 3 ऐसे भी होंगे जो कहेंगे क्या किया, इससे अच्छा तो मैं कर देता, इन्होंने तो ये कर लिया वो कर लिया, कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे जरूर। किसी को मन में ईर्ष्या होती है, थोड़ी जलन होती है, तो वो दूसरे की महिमा भी सुन नहीं सकते, वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे अवश्य। तो हम इसको संगठन की, संसार की कॉमन रीति मान लें, ठीक है? कॉमन बात है ये। इसको सीरियस न बनाएं कि हम इतने अच्छे फिर भी लोग हमें क्यों बोलते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया फिर भी ये बोलते ही रहते हैं, हमने गलती नहीं की ये हम पे कलंक लगाते ही रहते हैं। इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे। क्या विश्वास चाहिए इसके लिए अपने में, बोलो। और बोलो, अपने में विश्वास। हमें तो पता है ना कि हम ठीक हैं, बाबा को पता है लेकिन हमें तो पता है ना हम ठीक हैं। दूसरे हमें गलत कह रहे तो हम भी अपने को गलत क्यों मान लेते हैं। अपनी सत्य की शक्ति में संपूर्ण विश्वास। ज्ञान का बल हमें बहुत अच्छा रखना है, इसमें हमें ज्ञान की एक बात पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है, उसको स्मृति में भी लाते रहना है। ज्ञानी तू आत्मा वो है जो, बहुत दिन से महावाक्य आए नहीं मुरली में, जो मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत सब में समान रहे। ये ज्ञानी आत्मा का लक्षण है ना। जल्दी अपसेट हो जाना, जल्दी खुशी खो देना, जल्दी ही परेशान हो जाना, ये ज्ञानी आत्मा का लक्षण नहीं है। ठीक है, करें आप इसको अपने अंदर लाएं। मैंने भी अपने जीवन में इसी तरह प्रैक्टिस की है कि ये ज्ञानी आत्माओं के लक्षण नहीं है। हम ज्ञानी हैं तो हमें तुरंत अपसेट नहीं हो जाना है। लिख ले आप स्लोगन अपने पास, हम ज्ञानी हैं तो हमें किसी की बात सुनकर तुरंत अपनी खुशी को खो नहीं देना है। इसका आप अभ्यास करेंगे जीवन में। बातें बहुत सारी होती हैं, कार्य में भी होती हैं, जो जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी होती रहती हैं, लेकिन हमें पक्का करना है खुशी पर हमारा अपना अधिकार है, हमारी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। खुशी हमारा अपना खजाना है, इस खजाने को कोई लूट नहीं सकता। ये चिंतन से पक्का करेंगे, इसके लिए और कुछ नहीं केवल दृढ़ चिंतन की आवश्यकता है। तो हमें अपने को सेंसिटिव नहीं बनाए रखना है। ये बात इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी ध्यान दें इस बात पर। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये उल्टे अनुभव आ रहे हैं कि बहुत लोग जो सेंसिटिव हैं उनके मन पर उनके ब्रेन पर बुरा असर आता जा रहा है, और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी संसार में। लोगों को नींद नहीं आएगी, लोग परेशान रहेंगे, व्यर्थ चिंतन ज्यादा चलेगा, जब सोने जाएंगे तो सारा चिंतन प्रारंभ हो जाएगा जो सारा दिन हुआ है। हमें अभी से इस बात से मुक्त होते रहना है। अटेंशन दें, जो ज्ञान में बहुत समय से हैं वो कम से कम अपने को पावरफुल बनाएंगे, सेंसिटिव नहीं। समझते हैं सेंसिटिव, माताओं को इस शब्द का पता नहीं होगा, बहुत नाजुक। जैसे छुई मुई का पेड़ देखा हो, हमने भी एक बार देखा, हमें ले गए कि देखो ये छुई मुई का पेड़ है, हाथ लगाओ तो सचमुच उसकी टहनियां नीचे को झुकने लगी, मुरझाट हो गई। तो ऐसे छुई मुई बनना, सेंसिटिव बनना, नाजुक बनना कि हमें कोई कुछ कहे ही नहीं, फिर तो हम सन्यासी बन जाए ना, जंगल में जाके रहें, आसपास कोई न हो, कोई कुछ बोलने वाला न हो। लेकिन ऐसे में हम कमजोर आत्मा बन जाएंगे। हम एक चैलेंज कर दें, तुम हमें बुरा बोलते रहो, हम अपनी खुशी को नहीं खोएंगे। हो सकता है, हो सकता है, भाइयों को तो हो सकता है, बहनें बताएं, बहनें बताएं, हो सकता है, या कन्याएं जल्दी खुशी खो देती हैं। इसका अर्थ है कि हम प्यासी नजरों से दूसरों की ओर देख रहे हैं, हम बेगर बन गए, मांगने वाले, प्रेयर कर रहे हैं, हमारी महिमा करो तो हम खुश रहेंगे, हमसे अच्छा बोलो तो हम खुश रहेंगे, हमें कोई बुरा शब्द न बोलना, हमारी खुशी चली जाएगी। तो बोलने वाले क्या करेंगे? डटकर बोलेंगे कि अब देखते हैं तुम कैसे खुश रहोगे, हम देखते हैं तुम भगवान के बच्चे हो, कैसे खुश रहते हो। हम अब इस नाजुकपन से बाहर आ जाएं, अपने को पावरफुल बना दें और स्वीकार कर लें कि लोग तो बोलेंगे ही, ठीक है या नहीं? लोग तो बोलेंगे ही। मैंने बचपन से ही, जब से मधुबन में आया, ये पक्का कर लिया था, क्योंकि मैं देखता था जो लोग योग नहीं करते उन्हें भी लोग बोल रहे हैं, कैसा व्यक्ति है, बिल्कुल योग में रुचि नहीं है, और हम ज्यादा योग करते हैं तो भी बोलते हैं, क्योंकि क्या लगन लगी है, शायद पाप ज्यादा किए हैं इसलिए ज्यादा योग करते हैं। तो बोलने वाले तो बोलते ही है, मुझे बोला करते थे लोग। तो समझ में आ गया कि लोग तो बोलेंगे ही, हमें इससे जरा बाहर निकल जाना है। अपने विचारों को ब्रॉड कर दें, आप खुले विचार बनाएं, छोटे विचार नहीं। मान लो आपने सफर बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छी सेवा की, आप सेवाधारी बनकर आए एक मास यहाँ पर, आपने बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन चलते हुए किसी ने आपको कह दिया आपने कुछ काम नहीं किया, मुफ्त में खाना खाया बाबा का और माता जी की खुशी खत्म। अनुभव है, एक माता मेरे पास आई, बहुत अच्छी उसने सेवा की, उमंग से जा रही थी, एक दिन पहले ही उसको किसी ने बोल दिया, ऊपर ज्ञान सरोवर में डाइनिंग हॉल में थी, एक दिन पहले उसको बोल दिया तुमने ठीक से सेवा नहीं की, दोबारा ना आना यहाँ। वो बोलने वाला भी ऐसा ही था। अब माता जी ने वहीं रोना शुरू कर दिया, मेरे पास आई कि देखो वो मुझे ऐसा बोल रहा है। मैंने तो उसको हल्का किया, उसको भी कहा ऐसा नहीं बोला करते, यहाँ बहुत भावना से लोग आते हैं, सेवा भाव से आते हैं, कोई एक मास अपना घर छोड़ के आए, माताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक मास घर छोड़ना माताओं को सहज काम नहीं होता। तो बोलने वालों की भी गलती, लेकिन कोई बोल दे और हम बिल्कुल अपनी खुशी को इधर ही छोड़कर अपने घर रोते हुए चले जाएं, तो ये ज्ञानी आत्मा की पहचान नहीं है। हमने सच्चे दिल से सेवा की, टाइम पे आए, सबको संतुष्ट किया, बाबा भी जानता है, हम तो जानते हैं ना, हमने सब कुछ अच्छा किया, हमें किसी मनुष्य से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने में संतुष्ट हैं, बाबा हमसे संतुष्ट है, बस सारा जहान संतुष्ट होगा ही। कोई दो चार नहीं हो रहे हैं संतुष्ट तो उसके लिए परेशान न हो, परेशान हो जाते हैं हम कभी कभी, बाबा ने इसके लिए बहुत अच्छी बात पीछे कह दी थी दादी से मिलते हुए, क्योंकि दादी के आगे भी ये समस्या आती थी, हमारी बड़ी दादी सबको संतुष्ट करती थी, करना चाहती थी, लेकिन हम भी देखते थे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है हम संतुष्ट होंगे नहीं, तुम कुछ भी कर लो। तो दादी ने बाबा के सामने ये बात रखी और बाबा ने ये कहा कि 5% की तो छुट्टी है कि भाई अगर 500 लोग रहते हैं तो 25 लोग यदि असंतुष्ट हो गए तो कोई बात नहीं, 95 मास तो बहुत होते हैं ना, पास विद ऑनर से भी आगे हो जाते हैं। तो हमें अपने को सेंसिटिव नहीं बनाना है, ज्ञान का बल अपने में भरते चलें और इस सेंसिटिव नेचर को समाप्त करते चलें। पसंद है भाइयों को? तो नो इफेक्ट, आज से हम इस पहली बात को लेंगे। नायब भाई आप लिखते रहना, पहली पॉइंट है बोल का इफेक्ट न हो। हम एक एक बात को लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो क्या होता है, एक एक के बोल को सुनकर ही सोचते रहते हैं, उस पे चिंता करते रहते हैं, चिंतन में वही चीज आती है, भगवान ने आज क्या कहा था ये बात छूट जाती है। तो इस पर हम अगले 10 दिन, जब तक हम दूसरी क्लास करें, बहुत अच्छा कार्य करेंगे, हम हाथ भी उठवाएंगे, कौन कौन दूसरों के बोल से अप्रभावित रहे हैं, हल के लिए हैं, बोल सुनकर उसके चिंतन में नहीं चले गए हैं, हम जानते हैं जब हम किसी चीज की प्रतिज्ञा करते हैं तो क्या हुआ करता है, ज्यादा आता है वो चीज, परीक्षा के रूप में ज्यादा आती है। हो सकता है आपके आपको बोलने वालों ने भी सुन लिया हो, हाथ खड़ा किया वो भी देख लिया हो, जिसको बाबा कहते हैं कि माया भी देख रही है सावधान, और वो आपको ज्यादा ही बोलने लगे कि परीक्षा तो ले लेने कितने पानी में है ये। तो याद रखना है हमें हर परीक्षा में पास नहीं, पास तो छोटी सी चीज यार, मैक्सिमम नंबर लेने हैं 95। ये बात हमें बहुत बल देती है, ये परीक्षा है और हमें इसमें इतने मार्क्स लेने हैं। अपने संकल्पों को भी वेस्ट नहीं करना है, अपनी शक्ति को भी वेस्ट नहीं करना है। नो रिएक्ट की बात आप ध्यान रखेंगे, नो रिएक्शन। माताओं को समझ में आ गई ना, नो रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया कर दी, वैसा ही व्यवहार कर दिया, इससे थोड़ा बचेंगे। और मैंने आपको कहा 5 सेकंड ठहर जाएंगे, अगर उससे लड़ना भी है तो संकल्प कर लो 5 सेकंड के बाद लड़ेंगे, अगर क्रोध करना है तो अपने को समझा दो 5 सेकंड के बाद, ठीक है ना। 5 सेकंड बहुत है, ठंडा हो जाएगा सब कुछ और आप एक ऐसी चीज से बच जाएंगे जो बहुत खराब थी, जिसको आप भी करना नहीं चाहते थे। पानी पी लें पर पानी वहां ना हो तो क्या करेंगे। अब हम दूसरी बात पर आ जाते हैं, सभी को करना है ये भी, 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम सकाश। एक हमने शांतिवन की सड़कों पे घूमने की बात की, वो अलग, उसमें डबल हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, वॉकिंग भी हो जाएगी और वाइब्रेशंस भी हो जाएंगे। लेकिन ये जब बैठते हैं, विशेष लक्ष्य बना लें कि बैठकर हमें चाहे प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे दुखी आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में रोगियों को वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे रात को जिनको नींद नहीं आ रही उनको वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे ग्रस्त के परिवारों में जिनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको वाइब्रेशंस देने हैं, चाहे निराश व्यक्तियों को वाइब्रेशंस देने हैं, कभी हमें स्टूडेंट्स को वाइब्रेशंस देने हैं। स्टूडेंट्स को क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स को आजकल ये समस्या आ रही है कि वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं, इसलिए एकाग्रता नहीं होती पढ़ाई में, याद नहीं रहता, पढ़ रहे हैं मन कहीं और भटक रहा है, तो बुद्धि उस चीज को ग्रहण नहीं करती। हमें ऐसे स्टूडेंट्स को भी वाइब्रेशंस देने हैं, तो 15-15 मिनट सभी फिक्स करें। अपना अपना भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं। एक बार आप करना चाहो तो 4:30 से 5:45 सवेरे, 7:15 से 7:30 शाम को। और अगर ये टाइम आपसे मिस होता है तो कोई भी दूसरा टाइम आप अपना चुन लें, क्योंकि वाइब्रेशंस दूसरों को देने से हमारे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। दूसरों को वाइब्रेशंस देने से हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होने लगती है, मन का भटकना रुक जाता है। जो भी नए बैठे हैं, केवल क्लास सुनने आए हैं, वो ध्यान दें, आप वाइब्रेशंस दो, एकाग्रता बढ़ जाएगी। वाइब्रेशंस देने में आपको कुछ भी समझ में ना आता हो, एक सिंपल विधि बता देता हूँ। मैं आत्मा यहाँ हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इतना तो सभी आराम से सोच सकते हैं, और मुझसे शक्तियों की किरणें फाउंटेन की तरह, पिचकारी की तरह सामने फैलने लगी। बस आधा आधा मिनट कर दें, शुरू ऐसे करेंगे आधा आधा मिनट, लेकिन बहुत बार धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएंगे, 1 मिनट 2 मिनट 5-7 बार, इससे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। जो माताएं घरों में रहती हैं वो अपने घरों में ये अभ्यास कर सकती हैं, इससे आपके घर के वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। बीके कॉलोनी की बहुत माताएं बैठी हैं, आप भी ये संकल्प कर लें कि आपको अपने घर के वातावरण को, वाइब्रेशंस को ऐसा बनाना है, कैसा कैसा, कोई भी आपके घर में आए उसको भी यज्ञ बना दो, कोई भी आपके घर में आए कम से कम शांति की फीलिंग लेकर जाए। हर एक व्यक्ति जहां भी है, आप किसी ऑफिस में हैं, आपका एक रूम है, वहां आप काम कर रहे हैं, वहां के वाइब्रेशंस आप ऐसे बना सकते हैं कि कोई भी, कोई तो आएगा ही ना सारे दिन में आपके पास, जो वहां आए उसको लगे कहां गए, कैसे सुंदर वाइब्रेशंस हैं। हर एक अपने अपने ऑफिस में, शांतिवन वालों के पास भी, बहुतों के पास ऑफिस हैं, किसी के पास अकेले के भी हैं, किसी के पास सामूहिक रूप से हैं, अपने अपने ऑफिस के वाइब्रेशंस को सुंदर बनाने के लिए पांच पांच मिनट भी सवेरे शाम दो संकल्प, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इन संकल्पों से वाइब्रेशंस बहुत सुंदर क्रिएट होते हैं। आप यदि रोज एक टाइम फिक्स कर दें, पांच पांच मिनट कर लें, जहां आप ज्यादा समय बैठते हैं, तो वहां जब आप बैठेंगे रोज जाकर, आपको बहुत गुड फीलिंग होगी, बहुत गुड फीलिंग। मान लो आप थके थकाए आए, किसी टेंशन से आ गए, वहां बैठते ही आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और जो भी वहां आएगा उसको भी बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अगली बात जो हमें कंटिन्यू करनी है, जिसके लिए बाबा ने बहुत प्रेरणा दी है इस बार, कैसा योग, ज्वालामुखी योग, जिसको साकार में बाबा ऐसे कहते हैं, इसको कोई बहुत बड़ी चीज आप न समझ ले, योग एक अग्नि है जिसमें विकर्म विनाश होते हैं, ऐसी कोई और अग्नि नहीं जो आत्मा को स्वच्छ करे। शास्त्रों में, हमारी फिलोसफीज में तो ये मान लिया, आत्मा तो है ही पवित्र, वैसी है वैसी रहेगी, फिर भी पतित पावन को बुलाते रहते हैं, मुझे शुद्ध करो, मुझे श्रेष्ठ बनाओ, मुझे सद्बुद्धि दो, ये बातें भक्ति में होती रहती हैं। योग ऐसी अग्नि है जिसमें आत्मा तप कर शुद्ध हो जाती है। तो योग जब अग्नि बन जाता है उसे ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं, और योग अग्नि तब बनता है जब हमारी बुद्धि और मन सर्वशक्तिवान पर स्थिर हो जाए। सिंपल भाषा में, सर्वशक्तिवान के अलावा कुछ देर तक हमें कुछ भी दिखाई न दे। मैं आत्मा, ये अभ्यास हमने कर लिया, फिर केवल बाबा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, उसकी शक्तियों की किरणें चार ओर फैल रही हैं, फिर चाहे अभ्यास करें मुझ में समा रही हैं, ये स्थिरता। दूसरे शब्दों में ये है, एक संकल्प में स्थित होना, इसका अभ्यास करना है। ये बहुत पावरफुल चीज है, थोड़ी देर भी ऐसा करने से हमारे विकर्म भी विनाश होने लगेंगे, विकार भी नष्ट होने लगेंगे, आत्मा में जो कुछ निगेटिव भर गया है वो भी निकलने लगेगा। इसका अभ्यास अच्छी तरह करना है। साथ साथ मैं एक दूसरा अभ्यास भी आपको अवश्य कहूंगा। एक भाई ने, हमारे इस ग्रुप में बैठे हैं वो भाई, उसने बहुत अच्छी बात सुनाई। वो उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो रोज 21 बार पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। देखो कार्य में वो भी हैं, उनके पास भी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने निश्चित कर दिया, एक दृढ़ता कर दी कि मुझे 21 बार ये अभ्यास करना है। जैसे भी उन्होंने मैनेज किया होगा, सवेरे शाम ज्यादा बार, हर घंटे में एक एक बार, तो इससे उनका जीवन बहुत सुखद हो गया है, अनेक व्यर्थ समाप्त हो गए हैं। तो मैं तो आप सबको ये याद दिलाऊंगा कि व्यर्थ को समाप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है पांच स्वरूपों का बहुत बार अभ्यास करना। व्यर्थ हम पर हावी हो जाए, व्यर्थ इतना ज्यादा चलने लगे कि हम परेशान हो जाएं और हमें कोई मार्ग न दिखाई दे उस व्यर्थ से बचने का, उसे पहले ही हम पांच स्वरूपों की साधना प्रारंभ कर दें, बहुत सुंदर हो जाएगा। जो भी उसका अभ्यास करते हैं उनको अनुभव है कि उससे सुंदर अभ्यास और कोई नहीं होता। संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है। उसके बाद ज्वालामुखी योग का अभ्यास बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसको आप बढ़ाएंगे आत्मा, दूसरा देव स्वरूप। देव स्वरूप को अपने सामने लाएंगे, जो बाबा कहते हैं जैसे ड्रेस रखी है सामने, तो देव संस्कार जीवन में आने लगेंगे। अपना पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप में अपने स्वमानों को याद करना है। एक किताब अभी निकली है, वहारे मैं ब्राह्मण आत्मा, वहारे मैं ब्राह्मण आत्मा। कहाँ मिल रही मुझे पता नहीं, हमें तो मिली है, मिल रही है, क्योंकि मुझे किसने कहा मिल नहीं रही है, यहाँ मिल रही है। अरे वाह, देखो ये लिटरेचर वाला बैठा है, 80 बंडल बेच चुके। बहुत सुंदर किताब है, सारी किताब स्वमान पर है, कहीं से भी खोल के पढ़ लेंगे, दो मिनट में भी नशा चढ़ जाएगा। सब अपने पास रख लें, हैं भाई किताबें, हाँ तो सब ले लें। बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य हैं, शायद किसी स्पार्क वाले ने बनाई या किसने बनाई, बहुत सुंदर। मैंने पढ़ ली तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने देख ली सारी आगे से पीछे तक कि कहीं से भी खोल के हम पढ़ लें। तो उसने 306 या 360 ऐसे कुछ स्वमान चुने मुरलियों से, और उसमें जो बाबा के महावाक्य हैं उन सब का कलेक्शन किया है। बहुत अच्छी लैंग्वेज भी उसने दी है। तो हम स्वमान और फिर लास्ट में फरिश्ता, इन पांच स्वरूपों के अभ्यास पर हम बहुत ध्यान देंगे। ये सब साधनाएं अब हमें अच्छी करनी है, क्योंकि जो नो इफेक्ट की स्थिति हम लाना चाहते हैं वो भी इन सब अभ्यास से ही आएंगी। आत्मा भरपूर होती जाएगी, आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएंगी और ये सब होता जाएगा। इसलिए अब जो छह साढ़े छह मास बाबा के आने के हमारे सामने हैं, तब तक हम बहुत अच्छे अभ्यास में रहेंगे। कामकाज तो होता ही रहता है, चलता ही रहेगा, सेवाएं तो चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, करने वाले भी आते रहेंगे, पर हम अपनी सेवाओं में भी दिव्यता भर लें। देखिए, कर्म तो संसार में हर व्यक्ति कर रहा है ना, लौकिक में भी कर रहे हैं, हर घर में माताएं घर संभाल रही हैं, सब बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन हमारे कर्म दिव्य और अलौकिक हो जाएं, ये हमारे कर्मों की मानता है। और इसका अर्थ है कि कर्म हम उस स्थिति में न करें जिसमें सारा संसार कर रहा है। कर्म करते हमारे अंदर कोई श्रेष्ठ स्मृति रहे तो कर्मों का इफेक्ट भी हम पर नहीं आएगा और हमारे कर्मों में दिव्यता आती रहेगी, कर्म हमें बांधेंगे नहीं। इसलिए बाबा ने कह दिया, जब तक तुम कर्म योगी नहीं बने, कर्मातीत नहीं हो सकेंगे। क्या होता है कर्म योगी न बनकर कर्म करने से? हर कर्म का इफेक्ट हम पर आता रहेगा। कोई कर्म हमें थकाएगा, किसी कर्म में हमें असफलता मिल गई तो वो खुशी ले जाएगा, किसी कर्म में टेंशन हो गई तो वो हमारी स्थिति बिगाड़ देगा। तो कर्म हमें बांधने लगेंगे, कर्म हमें कर्मातीत बना दें। इसके लिए कोई न कोई अच्छे अभ्यास के साथ कर्म करने की आदत सबको बनानी है। पसंद है तो सभी बहुत अच्छी साधना करेंगे। बाबा का ध्यान तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप पर रहा है, आप सबने देख लिया, बहुत खुशी की बात थी ये। बाबा ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि काम काम नहीं, यज्ञ सेवा सेवा नहीं, हम एक सुंदर प्लानिंग लेकर चलें जीवन में। हमारा जीवन बिना लक्ष्य और बिना प्लानिंग के न हो, जिनके पास ये दो चीज नहीं है संसार में भी, संसार में भी, लौकिक दुनिया में भी, वो कभी सुखी नहीं रहते, वो कभी तनाव मुक्त नहीं रहते। तो एक सुंदर लक्ष्य और एक सुंदर प्लानिंग के साथ हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हों, सभी लक्ष्य बना लें। बाबा ने जो जो कहा है ना, छह मास में ऐसा ऐसा देखना चाहते हैं। देखो भगवान की अपने बच्चों के लिए, अपने गॉडली स्टूडेंट्स के लिए श्रेष्ठ कामनाएं हैं। बहुत ऊंचा देखना चाहता है सुप्रीम टीचर अपने स्टूडेंट्स को, फादर के रूप में वो हमें संसार के सामने रखना चाहता है कि तुम केवल मेरे बच्चे नहीं, तुम पूर्वज भी हो, तुम संसार के बड़े हो, तुम्हें संसार को निरंतर देना है। अपने अंदर समा लें सभी इन बातों को, हम केवल उसके बच्चे नहीं, केवल पुरुषार्थी नहीं, बड़े हैं, बड़े जिनका फ्लो सारे संसार को जाता है, पूर्वज हैं हम। तो अपने मन में ये उमंग भर लें, हमें बाबा की हर बात को करना है। चैलेंज किया है भगवान ने हमें, उसके चैलेंज का सुंदर उत्तर देना है। हम नहीं करेंगे तो बोलो कौन करेगा। अपने मन में ये उमंग भरे, जैसे आवाज उठती रहे, हम नहीं करेंगे। जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास सद्ज्ञान है, जिनका शरीर भी अच्छा है, अच्छा है ना सबका, युवक बैठे हैं शांतिवन वाले, तो उन लोगों का देखो जो बीमार हैं, जो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, जिन्हें अवसर नहीं है। हम सब भाग्यवान हैं जिन्हें सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, कदम कदम पर भाग्य बना सकते हैं, सुंदर पुरुषार्थ कर सकते हैं। निश्चिंत जीवन दिया है बाबा ने। जो गृहस्थ में रहने वाली माताएं हैं वो जानती है ना कितनी चिंताएं हैं, और शांतिवन वाले समर्पित लोग बेफिक्र बादशाह है, निश्चिंत, न कमाने की चिंता न खाने का गम। ये कहावत है, न कमाने की चिंता न खाने का गम, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं हम, है ना नाज। तो मस्त रहना है, अगर हम ही नहीं कर सकेंगे संसार में, तो भला संसार में और कौन कर सकेगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जब मैं समर्पित होकर आया तो मैं सोचा करता था कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें कुछ सीखना नहीं, तुम्हें कुछ जानना नहीं, भगवान ने सब कुछ सिखा दिया है, तुम्हें सीखना नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ने के योग क्या होता है, ये योग अच्छा या ये योग अच्छा, बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है। तुम अगर नहीं करोगे तो संसार में कौन करेगा। तो ये संकल्प आंतरिक प्रेरणा देता था। सभी अपने अंदर सुंदर संकल्प क्रिएट करते रहें, हमें बाबा की कामनाओं को पूरा करना है। तो जन्म जन्म बाबा हमारी कामनाएं पूर्ण करता रहेगा। अगर अब हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो द्वापर युग के बाद वो भी ध्यान नहीं देगा। हम कहेंगे भगवान सुनता नहीं, पता नहीं पैसे वालों की सुनता है क्या। नहीं, उसका पैसे वालों से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नो इफेक्ट नो वेस्ट, नो वेस्ट नो इफेक्ट नो रिएक्शन, तीन शब्द कर देते हैं। ओम शांति।